सत्ता के स्वरूप और स्त्रीवादी आंदोलन। पृष्ठ संख्या 22। पितृसत्ता का स्वरूप। कोई भी सत्ता अपने गुलामों को सर्वप्रथम सामाजिक रूप से बहिष्कृत करती है। पुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था में स्त्री दलितों की तरह अज्ञानी, मूर्ख और दोयम दर्जे की नागरिक है। पितृसत्तात्मक समाज के अस्तित्व में आने के बाद से ही औरत की सामाजिक स्थिति गुलामों जैसी होती गई। एंगल्स कहते हैं कि औरत जाति की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार मातृसत्ता से पितृसत्तात्मक समाज का अवतरण थी। इसका संदर्भ ग्रंथ है सिमोन द बोवार, स्त्री उपेक्षिता, स्त्री विहार प्रकाशन, सरदाहा, 1990, पृष्ठ संख्या 52। ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में समाज के विकास के साथ साथ पुरुष में सत्ता के प्रति लोभ बढ़ता गया और वह अपने आत्मगौरव में बड़ी चालाकी से औरत का शोषण करने लगा। इस संदर्भ में सिमोन द बोवार के विचार से हम अवगत हो चुके हैं कि मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री को आचरण की सुविधा थी तथा स्त्री से शुद्धता एवं शुचिता की अपेक्षा कम की जाती थी। व्यभिचार के विरुद्ध नियम इतने कड़े नहीं थे। अब पितृ समाज में चूंकि औरत पुरुष की संपत्ति थी, इसलिए विवाह के पहले कौमार्य भंग न होना तथा आजीवन पतिव्रत निभाना उसका परम धर्म बन गया। साथ ही व्यभिचारिणी के लिए मृत्यु दंड तक का विधान भी। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 57। इस प्रकार पितृ प्रधान समाज के पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाने पर पुरुष ने अपने अस्तित्व में स्त्री के स्त्रीत्व को मिला लिया। पुरुषों के द्वारा उसे शुचिता की शपथ दिलाई गई और विरोध करने पर वैश्या और कुल्टा की संज्ञा देकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। वह किस तरह की पोशाक पहनेगी, कैसे चलेगी, यह सब पुरुष के द्वारा निर्धारित होने लगा। इस पुरुषवादी मानसिकता को स्पष्ट करते हुए राजेंद्र यादव ने लिखा है, इनवर्टेड कॉमा ओपन, समाज ने स्त्री को सिर्फ 3 नाम दिए हैं, कॉलन, पत्नी, रखेल और वैश्या। इसके अलावे वह किसी चौथे संबंध को स्वीकार ही नहीं करता। जब औरत को वह संरक्षण यानी रोटी, कपड़ा और मकान देने के साथ अपना नाम देकर सामाजिक स्वीकृति देता है तो कहता है पत्नी, लेकिन जब संरक्षण देकर अपना नाम नहीं देता तो वह रखेल है। जहां वह संरक्षण देता है न सामाजिक स्वीकृति जहां वह न संरक्षण देता है और न सामाजिक स्वीकृति तो वह वैश्या होती है, क्योंकि संरक्षण के लिए उसे बहुतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नतीजे में सामाजिक सम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता। संदर्भ ग्रंथ आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन, 2001, पृष्ठ संख्या 19। उषा महाजन अपने शोध प्रबंध उठो अन्नपूर्णा साथ चलो में परिवार को बचाने पर बल देती हैं। उनका मानना है कि बदलते सामाजिक मूल्यों का खामियाजा सबसे अधिक स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। विवाह पूर्व सगे रिश्तेदारों द्वारा मासूम बेटियों का शोषण, विवाहोपरांत विकृत यौनाचार एवं दहेज नामक संस्था की चक्की में पिसती स्त्री का जीवन संघर्ष आने वाले समय में क्या रूप लेगा, यह तो भविष्य ही तय करेगा। संदर्भ ग्रंथ उषा महाजन उठो अन्नपूर्णा साथ चले, समर लोक प्रकाशन, हिमालय पुस्तक भंडार, 1995। पितृ सत्तात्मक समाज में स्त्री की कोई स्वतंत्र संज्ञा नहीं रही। उसका नाम जन्म से मृत्यु तक पिता पति और पुत्र के साथ पैबंद की तरह जुड़ा होता है। अगर इन सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहेगी तो उसका एक ही रास्ता है, आत्महत्या। राजेंद्र यादव का मानना है कि इनवर्टेड कॉमा ओपन, कोई भी औरत आत्महत्या या आध्यात्म का चुनाव स्वेच्छा से नहीं करती, उसके पीछे हमेशा सामाजिक मजबूरियों के आने जाने अनजाने दबाव होते हैं। बचाव का जब कोई रास्ता नहीं होता तो उन्हें इन्हीं दोनों विकल्पों से मुक्ति दिखाई पड़ती है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 19। पितृसत्ता के सामाजिक स्वरूप पर विचार करते हुए राजेंद्र यादव आगे लिखते हैं, इनवर्टेड कॉमा ओपन, उसने सारे सामाजिक कानूनों को कुछ इस तरह गढ़ा है कि पुरुष वर्चस्व को कहीं कोई चुनौती या खतरा नहीं है। पहले स्मृतियां और नीति शास्त्र खुलकर जिस बात को कहते थे, आज कानून उसी यथास्थिति को बारीक और पेचीदा ढंग से कहता है। स्त्री के पास सिर्फ कच्चे पत्ते हैं, सारे ट्रंप और तुरुप आज भी पुरुष के कब्जे में हैं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 27। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्वरूप चूंकि पितृसत्तात्मक है, इसलिए इस व्यवस्था को तोड़े बिना स्त्री अपने अस्तित्व को समाज में स्थापित नहीं कर सकती। पितृसत्ता द्वारा स्त्रियों से सामाजिक नियम बंदिश मनवाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। दुनिया के प्रत्येक धर्म में स्त्री को गौण माना गया और दुनिया के प्रत्येक धर्म में स्त्री से संबंधित मिथक मिलते जुलते हैं, जिसकी जड़ में पितृसत्ता रही है। ईसाई धर्म के अनुसार आदम के एकाकीपन को दूर करने के लिए ईश्वर ने उसे ईव को दिया। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 72। कुरान के आयत में कहा गया है कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे अनाज के खेत हैं। संदर्भ ग्रंथ औरत के हक में, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 66। भारतीय धर्म ग्रंथों में जो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण है वह सर्वविदित है। दरअसल मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री पूजनीय थी, इसीलिए कि उसके पास प्रजनन की जादुई शक्ति थी। आज पितृसत्तात्मक समाज में भी जो दुर्गा काली की पूजा होती है, उससे मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के सर्वोपरि स्थान का पता, पृष्ठ संख्या 24, चलता है। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 52। पितृसत्ता का धार्मिक स्वरूप स्त्री को हमेशा अन्याय ही मानता रहा, क्योंकि सत्ता का स्वामी पुरुष वर्ग था और उसके हाथ में धर्म की छड़ी थी। वह कभी देवी के रूप में पूजी गई तो कभी दानवी के रूप में बहिष्कृत की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पितृसत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण ही उसे दानवी का रूप मिला होगा। इस संदर्भ में सिमोन द बोवार का विचार है, इनवर्टेड कॉमा ओपन, पुरुष की यह स्वभावगत विशेषता है कि वह हमेशा अन्य के संदर्भ में स्वयं के बारे में सोचता है। वह हमेशा स्वहित में सोचता है, अतः उसने स्वयं के संदर्भ में औरत को अन्य की कोटि में रखा। उसके चिंतन में यह द्वैत भाव पहले इतना स्पष्ट नहीं था। पहले तो वह एक ही तत्व में स्त्री पुरुष का अवतरण मान लेता था, किंतु जैसे जैसे औरत की भूमिका विस्तृत होती गई, वह पुरुष के लिए संपूर्ण रूप से अन्याय होती चली गई। उसके नाना रूप उभरे, कभी पुरुष ने उसे देवी माना तो कभी दानवी। वह प्रकट हुई पहाड़ों में, वन प्रदेशों में, बहती रही झरनों में, हर जगह उसने जन्म दिया उसी ने विनाश भी किया। मनमानी वैभवशालिनी प्रकृति की तरह क्रूर वह स्त्री एक ही साथ मांगलिक और अशुभ दोनों थी। कभी वह दुर्गा बनी, कभी काली। पूरे पश्चिम एशिया में वह भिन्न भिन्न नामों से पूजी गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 52। इस संदर्भ में सिमोन आगे कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, विधायकों, पुरोहितों, दार्शनिकों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने अब तक यह दिखाने की चेष्टा की है कि औरत को अधीनस्थ स्थिति स्वर्ग में ही बनाई गई। जिस धर्म का अन्वेषण पुरुष ने किया वह उसकी आधिपत्य की इच्छा का अनुचिंतन है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 58। इससे स्पष्ट होता है कि पितृ सत्तात्मक और पुरुष वर्चस्ववादी समाज द्वारा स्त्री के सामाजिक अधिकार छीनने के बाद उसका धार्मिक रूप से कभी देवी तो कभी दानवी कहकर शोषण किया गया और उसके मानवीय स्वरूप को नकारा गया। इस संदर्भ में एक विद्वान का कहना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमारे धर्म पितृ सत्तात्मक चरित्र वाले हैं, इसीलिए वहां संतान वारिस लड़का होता है, लड़की नहीं। पुरुष सत्ता अपनी संतान लड़का इसलिए चाहता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में बेटा ही अपने पितरों का ऋण चुकाता है, वंश को आगे बढ़ाता है। पुत्र के बिना वंश कैसे चलेगा? पितरों की आत्मा को राशन पानी कौन पहुंचाएगा? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ राकेश कुमार, पुस्तक नारीवादी विमर्श, प्रकाशन आधार, पंचकुला 2001, पृष्ठ संख्या 101। इस प्रकार धीरे धीरे धार्मिक रूप से पितृ सत्ता द्वारा स्त्री को सारे सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उसकी सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती गई। पुरुष शासक का प्रतीक बन गया। ताकत की भूख बढ़ी तथा उसने देवताओं में ही नहीं दुनिया के सर्वोच्च देव के रूप में भी स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया। पितृ सत्तात्मक समाज द्वारा मातृ सत्तात्मक समाज पर आधिपत्य जमा लिया गया। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 109। इस संदर्भ में लेविस्ट्रस का मत है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सत्ता चाहे सार्वजनिक हो या सामाजिक, पृष्ठ संख्या 25, वह हमेशा पुरुष के हाथ रही। स्त्री हमेशा अलगाव में रही। उसे यदि पुरुष ने देवी का रूप दिया तो इतने ऊंचे उठा दिया, निरपेक्ष रूप से इतनी पूज्य बना दिया गया कि मानव जीवन से उसे प्राप्त ही नहीं हो सका। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 110। पितृ सत्ता के स्थापित होने के बाद उत्पादन का स्वामित्व पुरुष वर्ग के हाथों चला गया। स्त्री के जिम्मे जो भी आर्थिक अधिकार थे वह छीन लिए गए। पुरुषों ने अपने श्रम के बल पर, अपने अतिक्रमण की क्षमता के द्वारा, नए नए औजारों के माध्यम से नई नई परियोजनाएं खड़ी की। कार्य क्षेत्र के विस्तार और समृद्धि के सारे साधन पुरुष के हाथों में होने के कारण स्त्री की स्थिति दासी की होती गई। सिमोन द बोवार का मत है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सिर्फ परियोजनाओं के आधार पर पुरुष द्वारा औरत के दमन को व्याख्यायित करना अपर्याप्त होगा क्योंकि श्रम के विभाजन से दो सेक्सों में एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी तो संभव हो सकता था। तब फिर स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा क्यों नहीं घटित हुआ? मैं सोचती हूँ कि पौरुषीय चेतना की तानाशाही ने हमेशा वस्तुपरक ढंग से अपनी प्रभुता स्थापित की है। मानवीय चेतना में मौलिक रूप से अन्यता की कोटि अंतर्निहित है। मनुष्य की मौलिक चाह दूसरे पर शासन करने की रहती है। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 45। इस प्रकार सामाजिक रूप से स्त्रियों पर अधिकार स्थापित करने के बाद पुरुष द्वारा आर्थिक रूप से स्त्रियों को पूर्णतः वंचित कर दिया गया। पितृसत्ता की इस षड्यंत्र का विश्लेषण करते हुए सिमोन लिखती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नित्य नई तकनीकों से पुरुष नई एवं असीम संभावनाओं को खोल रहा था। उसने दास प्रथा का अन्वेषण किया जिससे श्रम को उत्पादन में लगाया जा सके। औरत से अधिक काम गुलाम कर सकते थे, अतः धीरे धीरे उसकी आर्थिक भूमिका फीकी पड़ने लगी। माना जाने लगा कि स्त्री कुछ नहीं बस सेवा के लिए बनी, पुरुष से भिन्न नहीं बल्कि पुरुष की होकर भी उससे हीन थी। स्वामी के पितृ प्रधान समाज में गुलाम एक बोझा ढोने वाला पशु था। मालिक के हाथों में जालिम सत्ता थी जिसको प्रयुक्त कर वह उच्चता हासिल करता था। यही सत्ता उसने औरत के ऊपर भी हासिल कर ली। पुरुष की ताकत और सत्ता बढ़ने के साथ साथ औरत कमजोर होती गई। खासकर जब पुरुष को जमीन का स्वामित्व मिला तब उसने स्त्री को भी अधीनस्थ करना चाहा ताकि वह उसकी वंश वृद्धि कर सके। पुरुष स्वयं एक उत्पादक शक्ति था, अतः उसने अपने बच्चों तथा संतति पर समान रूप से स्वामित्व का दावा किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 55। स्त्रियों को वश में रखने के लिए पुरुष द्वारा वैयक्तिक संपत्ति का प्रावधान किया गया। इस संबंध में एंगल्स का मानना है कि स्त्री का शोषण वहां से शुरू हुआ जहां से वैयक्तिक संपत्ति का प्रावधान हुआ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्रीत्व का मानचित्र, लेखिका अनामिका, प्रकाशन सारांश, दिल्ली 1996, पृष्ठ संख्या 46। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पितृसत्ता द्वारा स्त्री को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया गया ताकि वह हमेशा के लिए पुरुष पर निर्भर, पृष्ठ संख्या 26, हो जाए, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन स्त्री मुक्ति के लिए जरूरी था। इसलिए उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार से वंचित रखकर उसका निरंतर शोषण किया जाता रहा। स्त्रीवादी आंदोलन नए संरचनात्मक स्वरूप एवं नई अंतर्दृष्टियां। कालांतर में स्त्रियों में जागरूकता बढ़ी, पितृसत्ता के षड्यंत्रों को वे समझने लगी और अपने खोए अधिकार फिर से पाने के लिए संगठित होकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। वह इस तथ्य की खोज में भी लगी कि क्यों और कैसे स्त्री अपने अधिकार से वंचित कर दी गई। सिमोन ने सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रश्न उठता है कि आखिर यह कैसे शुरू हुआ। यह समझना तो आसान है कि दो सेक्स के बीच द्वंद का कारण द्वैत की स्थिति थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो विजेता है वह पूर्णता की स्थिति पाएगा, लेकिन ऐसा क्या था जिसके कारण पुरुष ही प्रारंभ से विजेता बना। यह भी तो संभव था कि औरत की जीत होती या फिर इस संघर्ष की। इस प्रकार निदान नहीं होता। आखिर क्यों यह दुनिया अब तक पुरुष की ही रही। क्या यह बदलाव अच्छा है, अतीत के हित में है? क्या इसके कारण औरत और मर्द में जागतिक विषयों में बराबरी का साझा होना संभव हो सकेगा? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 28। इस प्रकार स्त्री अब पूरी परंपरा को, पूरे इतिहास को शक की निगाह से देखने लगी। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पुरुषों के दृष्टिकोण के बचकानेपन को समझने के लिए पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। पुरुष औरत की अनन्यता की स्थिति से कई सूक्ष्म फायदे भी उठाता है। इस तरह लगता है कि औरत के प्रति जो पुरुष जितना आक्रामक और घृणापूर्ण होता है, वह उतना ही अपनी हीन ग्रंथि का शिकार है। संस्कारवश पुरुष औरत से मिली हुई सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता। इस आशंका से वह ग्रस्त रहता है। वह सोचता है कि अधिकारों को छोड़ते ही उसकी औरत भी छूट जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 29। पितृसत्ता के प्रति इस दृष्टिकोण के सामने आने के बाद स्त्रीवादी आंदोलन अपने नए संरचनात्मक स्वरूप में आगे बढ़ा। पारंपरिक मिथक, धार्मिक रूढ़िवाद और सामाजिक राजनीतिक विषमता का विरोध तो किया ही गया, साथ ही स्त्री मनोविज्ञान की पारंपरिक धारणाओं की भी पुनर्व्याख्या की गई। पारंपरिक मनोविश्लेषण के संबंध में सिमोन द बोवार का विचार है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वस्तुतः मनोविश्लेषण का पूरा विवेचन प्राय पुरुष मनोविश्लेषकों द्वारा ही किया गया है। यह मनोविज्ञान ही है जिसमें पुरुष की परिभाषा मानव प्राणी के रूप में और स्त्री की परिभाषा नारी के रूप में की गई है। जब स्त्री सर्वपरिता की ओर बढ़ती है तो कहा जाता है कि वह पुरुष की बराबरी करती है। लड़की माता पिता के बीच निरंतर तादात्म्य बोध के द्वंद में फंसी रहती है। प्रश्न है कि वह पौरुषीय हो या नारी सुलभ प्रवृत्तियों को ही सुधारे। मेरे मत से इसके बदले स्त्री का ही सही द्वंद यह है कि या तो वह अपनी अनन्यता की नियति को स्वीकार कर ले या फिर अपनी आत्मसत्ता की वैयक्तिकता स्वीकार स्थापित करे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 43। अब पृष्ठ संख्या 27। शरीर संरचना की जैविक व्याख्या के क्रम में जर्मेन ग्रियर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि स्त्री देह को लिंग, हड्डी, गोलाई, केश और कोख तक सीमित कर देना पुरुषों की चाल है, जबकि सत्य कुछ और ही है। वक्ष की गोलाई पर जर्मेन ग्रियर लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, छाती का आधार बनाने वाली ग्रंथि एक उत्तल ढांचा है जो दूसरी पसली से छठी पसली तक फैला है। उसके आसपास जमा होकर छातियों के बीच का दर्रा बनाने वाली चर्बी अपने आप में कोई यौन लक्षण नहीं है। ऐसे मामलों में जहां बड़ी छातियों वाली स्त्री के शरीर पर और जगह चर्बी नहीं दिखती, शरारत हार्मोन की होती है। छातियों पर दिया जाने वाला ध्यान और छातियों के मुरीद जो सचमुच चाहते हैं उसे लेकर होने वाली उलझन, ये दोनों मिलकर स्त्रियों को कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। वे एकदम ठीक तो तब कभी नहीं हो सकती, वे हमेशा ही या तो बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़ी, गलत आकार की या बहुत पिलपिली। स्तनीय रूढ़ छवि के लक्षणों को अपना पाना असंभव है क्योंकि यह बनावटी है, लेकिन इनकी नकल किसी न किसी तरह की ही जानी चाहिए। सच्चाई या तो थुलथुल है या मरघिल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ जर्मेन ग्रियर, पुस्तक विद्रोही स्त्री, प्रकाशन वाणी 2001, पृष्ठ संख्या 36। पितृसत्ता की लिंग राजनीति पर मिलर का विचार है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमारा समाज ऐतिहासिक सभ्यताओं के समान पैतृक है। तथ्य इसके प्रमाण है कि अगर कोई सेना, उद्योग, तकनीक, यूनिवर्सिटी, विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिकता, संक्षेप में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति, यहाँ तक कि पुलिस के क्षेत्र में भी सत्ता हमेशा पुरुष के हाथों में ही रही है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ नारीवादी विमर्श, पृष्ठ संख्या 25। भाषा के ऊपर भी पुरुषों का अधिकार बना रहा। भाषा में निहित पितृसत्तावादी दृष्टिकोण को सामने लाया गया, जिससे यह तथ्य उभर कर आया कि भाषा पुरुषों की अनुभव है। मुहावरा पुरुषों द्वारा रचित है जो स्त्री विरोधी है। पुरुषवादी भाषा के संरचनात्मक स्वरूप पर सुधीश पचौरी ने अपनी पुस्तक उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रचलित कोई भी भाषा शिष्ण केंद्रिकता से इस कदर संचालित होती है कि वह स्त्री अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ ही रहती है। यो भाषा एक सामाजिक संबंध है, लेकिन सदियों से पुरुषों के द्वारा रचित स्वकेंद्रित अनुभवों का निर्माण करने के कारण स्त्री अनुभव को बहुत दूर तक खारिज कर चुकी है। उसकी दी हुई भाषा के स्तरों एवं संरचना को तोड़े बिना स्त्री को वाणी नहीं मिलती। स्त्रियां जहां काम करती हैं, वहां उन्हें शिष्ण केंद्रित भाषा के अतिचार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति कितनी भयावह और सार्वजनिक है कि लेना देना, लेंगी देंगी जैसी, पृष्ठ संख्या 28, मामूली क्रियाओं तक को मर्दों द्वारा द्विअर्थी बना दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है उत्तर आधुनिकता साहित्यिक विमर्श, पृष्ठ संख्या 121। पुरुष वर्चस्ववादी भाषा के संबंध में एक पाश्चात्य विद्वान का मानना है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमें भाषा की खोज करनी होगी, अन्यथा हम नष्ट हो जाएंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 121। समाज में प्रचलित गालियां भी लिंग पर आधारित हो रही हैं। ये गालियां मूलतः पुरुष के लिंग केंद्रित होती हैं। इन गालियों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस संबंध में सुधीश पचौरी का मत है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, भाषा की यह शिष्ण केंद्रिकता औरत को निर्वाक बनाती है। दुनिया की तमाम लेखिकाओं को प्रचलित भाषा अपूर्ण और लिंग भेदी लगी है और नई भाषा वे आसानी से नहीं बना सकी हैं। इसलिए एक ऐसा विमर्श पैदा हुआ जो खामोशियों से अर्थ देता है। स्त्रियों के शब्दकोश में गालियों की मात्रा बहुत कम अथवा शून्य होती है, तो इसलिए कि गालियां मूलतः शिष्ण केंद्रित व्याकरण से उद्बुद्ध होती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 122। मैनेजर पांडे गालियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर इन गालियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो यह साफ जाहिर होगा कि दुनिया में जितनी गालियां हैं वे स्त्रियों के लिए ही होती हैं। गालियां दी तो पुरुष को जाती हैं, पर वह मूलतः स्त्रियों को अपमानित करने के लिए दी जाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ हंस, औरत उत्तर कथा विशेषांक, पृष्ठ संख्या 29। उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि पुरुष केंद्रित भाषा को नकारा गया जो स्त्रीवादी आंदोलन की नई अंतर्दृष्टि की देन थी। पितृसत्ता के इस षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य स्त्री की स्वतंत्रता को कुचलना था। पितृसत्ता के सारे पहलुओं पर विचार करते हुए जिस चीज की मांग की गई वह स्त्री की स्वतंत्रता थी। पुरुष चूंकि हमेशा से स्त्री की स्वतंत्रता से डरता रहा है, अतः उसे सर्वप्रथम स्त्री की स्वतंत्रता को अपने आक्रमण का केंद्र बनाया। पितृसत्ता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए राजेंद्र यादव अपनी पुस्तक आदमी की निगाह में औरत में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इस सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमा में शब्द जाल से आदमी ने औरत की जिस एक चीज को मारा, कुचला या पालतू बनाया है वह है उसकी स्वतंत्रता। आदमी हमेशा से नारी की स्वतंत्र सत्ता से डरता रहा है और उसे ही उसने बकायदा अपने आक्रमण का केंद्र बनाया है। अपनी अखंडता और संपूर्णता में नारी दुर्जेय और अजेय है। वहां वह ऐसी स्थिति का पुंज है जो स्वतंत्र और स्वच्छंद है, बनैली और स्वर्णी। इसीलिए आदमी ने उसे तोड़ा है। तोड़कर ही किसी को कमजोर और पालतू बनाया जा सकता है। आदमी ने लगातार और हर तरह कोशिश की है कि उसे परतंत्र और निष्क्रिय बनाया जा सके। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, पृष्ठ संख्या 15। परिणामतः स्त्रीवादियों द्वारा स्त्री स्वतंत्रता की मांग रखी गई। यह स्वतंत्रता पितृसत्ता के हरेक पहलू से निजात दिलाने की थी। स्त्रीवादी आंदोलन ने अपने नए संरचनात्मक स्वरूप में नई अंतर्दृष्टियों के साथ पितृसत्ता से स्त्री स्वतंत्रता की बात उठाई। पृष्ठ संख्या 29। अब स्त्रियां चुप बैठने वाली नहीं रही। पुरुषों द्वारा दिए गए प्रत्येक बंधन से वह निजात पाना चाहती है जो उसकी स्वतंत्रता की राह में रोड़े अटकाता हो। जर्मेन ग्रियर स्त्री स्वतंत्रता की बात पर लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आंखों में आंखें डालकर देखते इंसान की बजाय देखी जा रही चीज होने से आजादी। आजादी मर्दों की खाई अघाई चाहत को उकसाते रहने की जिम्मेदारी से, जिसकी नाक तले किसी भी छाती की सख्ती या किसी भी टांग की लंबाई नहीं आती। आजादी तकलीफ देह कपड़ों से, जिसका पहना जाना मर्दों को गुदगुदाने के लिए जरूरी है। उन जूतों से आजादी जो हमें छोटे कदम लेने पर मजबूर करते हैं। हम पर बरसती लातन छीछा लेदर से आजादी, बलात्कार से आजादी, चाहे वह इमारत बना रहे मर्दों द्वारा जुबानी नंगा करने से हो, चाहे रोजमर्रा के कार्यों के सिलसिले में आते जाते ठोह रखे जाने, बात कहे जाने या सड़क पर पीछा किए जाने। मर्द सहकर्मियों की चिपी चिपी चिपचिपी छेड़छाड़ या बांस के टटोलने या उन्हें हम प्यार करती हैं उन मर्दों के परपीड़न या हमें अपने इच्छा के विरुद्ध इस्तेमाल करने या किसी परिचित या अपरिचितों के दल द्वारा हिंसा से आतंकित करने और पीटने से हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ विद्रोही स्त्री की भूमिका। इस प्रकार आधुनिकता के आलोक में स्त्री की शरीर संरचना की पारंपरिक धारणा की वैज्ञानिक व्याख्या की गई और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि स्त्री को देह के रूप में परिभाषित करना पितृसत्ता की चाल है। इस प्रकार स्त्रीवादी आंदोलन नए संरचनात्मक स्वरूप में आगे बढ़ा। नई अंतर्दृष्टियां स्थापित हुईं। लिंग भेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया और पुरुष प्रभुसत्तात्मक लैंगिक राजनीति को उजागर किया गया। वैज्ञानिक तर्क और यूरोपीय प्रभाव। जैसे जैसे सभ्यता के विकास के साथ वैज्ञानिक खोजों एवं अध्ययनों का विकास होता गया और नारीवादी आंदोलन पर भी वैज्ञानिक अध्ययनों का प्रभाव पड़ा। स्त्रीवादी आंदोलन में सदियों से प्रचलित पितृसत्ता के रूढ़ मूल्यों के विरुद्ध तीव्र वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर प्रतिक्रिया शुरू हुई। पुरुष निर्मित सामाजिक एवं धार्मिक मिथकों को वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। सिमोन की दृष्टि में मिथक मिथ्या वस्तुओं का जाल है, जिसमें स्थापित मूल्यों पर आस्था रखने वाले व्यक्ति सहज ही फंस जाते हैं। सिमोन मिथकों को पुरुषवादी बताते हुए कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इस प्रकार यह मिथ पुरुष के लिए उपयोगिता की ही दृष्टि से वर्णित किया गया है। स्त्री संबंधी कल्पना मानव विलासिता है। यह तो तभी प्रकट होती है जब पुरुष अपनी आवश्यकताओं की मांग से भागता है। संबंध जितने वास्तविक होते हैं उतनी कम कल्पना और आदर्श स्वरूप की आवश्यकता होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 118। अब पृष्ठ संख्या 30। दरअसल समाज में प्रचलित मिथकों की स्थापना पितृसत्ता ने अपनी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर की। जर्मेन क्रियर ने देह संबंधी मिथक को वैज्ञानिक कसौटी पर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से जांचा परखा है। स्त्रीलिंग की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए जर्मेन ग्रियर लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर हम शरीर की कोशिका को इतना आवर्धित कर पाए कि गुणसूत्रों को करीब 2000 गुना बड़ा करके देख पाए तो हम उस विभेदन को देख पाएंगे जो मानवीय लिंग के परमावश्यक मानवीय लिंग के लिए परमावश्यक है। पुरुष शरीर की कोशिका में 45 अन्य गुणसूत्र के साथ एक नन्हा सा गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र। असल में यह लिंग गुणसूत्र बिल्कुल नहीं है और अपने पार्थक्य के कारण इसकी कुछ अजीब ही समस्याएं हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ विद्रोही स्त्री पृष्ठ संख्या 28। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह कहने से भी कुछ साबित नहीं होता कि दोनों लिंगों के स्वभाव के अनुसार ही उनके वर्तमान कार्य और स्थितियां बटी हुई हैं और यही उनके लिए श्रेष्ठ है। कोई भी दोनों लिंग के स्वभाव को न जान सका है, न जान सकता है, जब तक कि उन्हें अलग अलग स्थितियों में रखकर देख न लिया जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री और पराधीनता, संवाद प्रकाशन मेरठ 2002, पृष्ठ संख्या 3। इस प्रकार स्त्रीवादी आंदोलनों के दौरान पितृसत्ता द्वारा प्रचलित प्रचारित ज्ञान को वैज्ञानिक तर्कों द्वारा खारिज करने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में प्रभा खेतान का मत समीचीन है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्री विमर्श के केंद्र में चूंकि स्त्री है, इसलिए पितृसत्ता द्वारा अर्जित और प्रचारित ज्ञान को वह अस्वीकार करता है। नारीवाद पारंपरिक ज्ञान और दर्शन को चुनौती देता है। ऐतिहासिक रूप से हम पुरुष प्रधान समाज में रहते आए हैं, जहां स्त्री ज्ञाता नहीं बल्कि ज्ञान विषय वस्तु है हम जिसे यथार्थ परक ज्ञान या वस्तु परक ज्ञान कहते हैं, वास्तव में वह पुरुषों द्वारा निर्मित एवं उत्पादित ज्ञान है। इसी ज्ञान को पुरुष सत्ता ने समाज के केंद्र में अधिष्ठित किया। इसके विपरीत नारीवादी सिद्धांत स्त्री केंद्रित ज्ञान की चर्चा करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हंस अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य विशेषांक, पृष्ठ संख्या 36। स्पष्ट है कि यह स्त्री केंद्रित ज्ञान वैज्ञानिक तर्क से संपृक्त था। सदियों से स्त्री को दुर्बल माना जाना पितृसत्ता की एक चाल रही है, लेकिन यह मिथक अब टूट रहा है। स्त्री विमर्श में यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि स्त्री को पुरुषों के द्वारा जानबूझकर शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल बनाया गया ताकि वह पुरुषों की गुलाम बनी रहे। आज की स्त्री पितृसत्ता द्वारा निर्मित उन सभी प्रतिमानों का विरोध करती है जो अवैज्ञानिक है। तस्लीमा नसरीन जी लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्री को दुर्बल कौन समझते हैं जो कहते हैं कि स्त्री शारीरिक रूप से दुर्बल है? वे गलत है, झूठे हैं। आज भी अगर एक नर और नारी शिशु को भरे तालाब में छोड़ दिया जाए तो पहले जिस शिशु की मौत होगी वह नर शिशु ही होगा। यदि नारी शिशु का फेफड़ा या हृदय नर शिशु से ज्यादा शक्तिशाली है, यदि प्रतिरक्षा या जिंदा रहने की क्षमता नारी शिशु में अधिक है, तो कैसे एक झटके में राय दे दी जाती है कि स्त्री दुर्बल है, कोमल है, भीरू है और लाजवंती है? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हंस औरत उत्तर कथा विशेषांक, पृष्ठ 75। इससे स्पष्ट है कि जैविक रूप से अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद स्त्री को सामाजिक रूप से कमजोर बनाया गया, जो पितृसत्ता की साजिश थी। आधुनिक स्त्री विमर्श की शुरुआत यूरोप में हुई, जिसका प्रभाव निश्चय ही एशिया सहित विश्व के तमाम देशों में चल रहे स्त्री आंदोलनों पर पड़ा। यूरोप में स्त्रीवादी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व की मांग की गई। सिमोन ने सर्वप्रथम इस बात की मांग की कि औरत का स्वतंत्र अस्तित्व हो, वह पुरुष के साथ रहकर भी उसकी दासी या गुलाम बनकर नहीं रहे। स्त्री स्वाधीनता को परिभाषित करते हुए वह लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा पे, स्त्री स्वाधीनता का अर्थ हुआ कि स्त्री पुरुष से जिस पारंपरिक संबंध को निभा रही है उससे मुक्त हो। हम स्त्री पुरुष के बीच घटने वाले संबंध को नकार नहीं रहे, उसका मानना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा और वह पुरुष की होकर भी जिएगी। दोनों अपनी स्वायत्तता में दूसरे का आनंद रूप भी देखेंगे। दासत्व जब समाप्त होगा और वह भी आधी मानवता का, तब व्यवस्था का यह ढोंग समाप्त हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 346। सिमोन ने जिन मुद्दों को उठाया वह भारत के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसने वर्ग और संप्रदाय से अलग स्त्री को एक वर्ग माना जो पूरी दुनिया में शासित है। सिमोन द बोवार अपनी पुस्तक स्त्री उपेक्षिता में पूरी दुनिया की स्त्री को एक मंच पर आने का आह्वान करती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्री को अमीर हो या गरीब, श्वेत हो या काली, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यह दुनिया पुरुषों ने बनाई पर स्त्री से पूछकर नहीं। फ्रांस की राज्य क्रांति हो या विश्व युद्ध, स्त्री से पुरुष सहारा लेता है और पुनः उसे घर लौट जाने को कहता है। वह सदियों से ठगी गई है। यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल भी की है तो उतनी ही जितने कि पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए उसे देना चाहा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 321। स्पष्ट है कि सिमोन का मुक्ति संदेश पूरी दुनिया की स्त्री मुक्ति के लिए रहा और उसका प्रभाव एशियाई देशों के स्त्रीवादी आंदोलनों पर भी पड़ा। भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन पर भी सिमोन की पुस्तक स्त्री उपेक्षिता ब्रैकेट में द सेकंड सेक्स का प्रभाव बहुत गहराई से पड़ा। इसकी पुष्टि प्रभा खेतान की निम्न पंक्तियों से होती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लगता है कि सिमोन हमारी माँ, बहन या हम बड़ी गहरी दोस्त हैं, जिनकी गोद में कभी मुंह छिपाकर हम रोए और जो हमारा दर्द और हमारी त्रासदी सब कुछ समझती हैं। उनसे हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। हमसे बहुत दूर बैठकर भी वे जानती हैं कि औरत होना किसे कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 15। यूरोप में स्त्री मुक्ति के संदर्भ में दूसरी प्रमुख मांग थी स्त्रियों की आर्थिक, पृष्ठ संख्या 32, स्वतंत्रता। इस संदर्भ में एलेन सोवोल्टा का मानना था कि स्त्री दलन का मुख्य कारण निजी संपत्ति की अवधारणा है। यह अवधारणा एक ऐसी व्यवस्था का जनक है जो सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति और सत्ता दोनों दे देती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ हंस, जनवरी फरवरी 2000, पृष्ठ संख्या 37। आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री खुद निर्णय लेना सीखती है। इस विचारधारा ने भारत में स्त्री मुक्ति आंदोलन पर प्रभाव डाला। शिक्षा के आलोक में स्त्रियां आर्थिक उपार्जन के लिए आगे आईं। हंस मार्च 2001 के विशेषांक में प्रभा खेतान ने इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है। वह मानती है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सही मायने में स्त्री स्वतंत्र हो पाएगी। जो लोग इस स्वतंत्रता को यौन उच्छृंखलता का पर्याय मानते हैं, उनकी आलोचना करते हुए प्रभा खेतान ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नारीवाद केवल नर मादा के आंतरिक संबंधों का ही उल्लेख नहीं करता, बल्कि यह स्त्री की यौनिकता को स्थापित जरूर करना चाहता है, मगर सबसे अधिक नारीवादी स्त्री की यौनिकता के प्रति उस समझ को अभिव्यक्त करना चाहता है और उस बोध को हासिल करना चाहता है जिसके बारे में स्त्री अब तक खामोश रहती आई है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 9। उत्तर आधुनिकतावादियों का प्रभाव भी भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन पर दिखाई पड़ता है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार स्त्री शोषण का सबसे बड़ा हथियार यौन शोषण है और यौन शोषण की औजार है भाषा। इस संदर्भ में जूलिया क्रिस्तोवा का मानना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां, चाहे स्त्री की हो या पुरुषों की, पितृसत्तात्मक सिंबॉलिक और मातृ संवेदना मूलक सिमियोटिक के विषय तत्वों का समायोजन होती हैं। वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का समायोजन, तर्क और अंतःप्रज्ञामूलक उस अर्धविस्मृत भाषिक लय का संयोजन जो गर्भ में माँ की देह से छनकर शिशु देह में उतर आता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है स्त्रीत्व का मानचित्र, अनामिका, पृष्ठ संख्या 72। पितृसत्ता की भाषा पर उत्तर आधुनिक विमर्श प्रस्तुत करते हुए सुधीश पचौरी ने लिखा है कि सदियों से पुरुषों द्वारा स्वकेंद्रित अनुभवों का निर्माण करने के कारण स्त्री अनुभवों को बहुत दूर तक खारिज कर चुकी है। उस दी हुई भाषा को एवं संरचना को तोड़े बिना स्त्री को वाणी नहीं मिल सकती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है सुधीश पचौरी, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, पृष्ठ संख्या 121। पश्चिम में स्त्री समलैंगिकता के मुद्दे पर बहस चली। स्त्री समलैंगिकता के समर्थक विद्वानों का मानना था कि यह हर तरह के यौन शोषण से परित्रिप्त स्त्रियों का आपसी दोस्ताना तालमेल का विस्तार है। समलैंगिक संबंधों के औचित्य पर एंड्रिन लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओपन, देह से अधिक आत्मा का तालबंध, कॉमा, एक दूसरे के सब कुछ कह सुन लेने के बाद की तृप्ति में एक दूसरे को ऐसा कोमल आत्मीय स्पर्श, स्पंदन, शांति और आराम देने की कोशिश है जो पुरुषों के तूफानी संसर्ग में बहुधा मिल ही नहीं पाती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, पृष्ठ संख्या 92। जर्मेन ग्रियर पुरुष की संभोग प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत मानती हैं, क्योंकि पृष्ठ संख्या 33, औरत के लिए संभोग का संबंध शरीर से कम मानसिक ज्यादा होता है। ग्रियर अपनी पुस्तक फीमेल यूनक में लिखती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह निहितार्थ की सही प्रक्रम का सही पालन होने पर ऐसी सांख्यिकी आदर्श देह तुष्टि की प्राप्ति सुनिश्चित है जिसमें संतोष मिलेगा, विषादकारी और भ्रामक है। उत्तेजना की जगह कोई भी चीज नहीं ले सकती। सहलाना, बहलाना संतोष की गारंटी नहीं है, क्योंकि मामला मनोलैंगिक विमोचन का है। पूर्ण तुष्टि स्नायु के एक छोटे से गुच्छे में नहीं, पूरे व्यक्ति के लैंगिक जुड़ाव में है। कामोतप्त भाषा के बाद स्त्रियों के लिए बना रहने वाला रति का आनंद, जिसे पुरुष घोर आश्चर्य से देखते हैं, भग्न शिश्न में नहीं, एक सामान्य ऐन्द्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। यह स्त्री की प्रतिक्रिया को कुंठित करती है। प्रणय और प्रेम विहलित प्रेम विहलता विहीन ऊर्जवस्वित ऊर्ज सॉरी ऊर्जस्विता का पुरुष आदर्श भयावह रूप से विषण कर देने वाला है। विमोचन को जब मसीनी शब्दावली में अभिव्यक्त किया जाता है, रति योनि में किया गया हस्त मैथुन हो जाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ जर्मेन्ड्रियर विद्रोही स्त्री पृष्ठ संख्या 44। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में स्त्री का समलैंगिक संबंध स्थापित करना सायास घटित एक घटना मात्र है, जिसे यूरोप में अब स्वीकारा जाने लगा है। हिंदी में समलैंगिक संबंधों को लेकर राजकमल चौधरी ने एक उपन्यास लिखा है, मरी हुई मछली, जिस पर पितृसत्तात्मक समाज के पैरोकारों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ इन्हीं समलैंगिक संबंधों को उद्घाटित करती है। शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास कोड वर्ड भी इन्हीं संबंधों के विभिन्न आयामों पर एक सार्थक बहस चलाता है। संदर्भ ग्रंथ है डॉक्टर अरुणा सितेश, नया मानदंड पत्रिका, पृष्ठ संख्या 6। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक जिंदगी में तेज रफ्तार में खुद को अकेली महसूस करती स्त्रियों की संख्या भारत में भी बढ़ी है, जिस कारण हिंदी साहित्य में भी यह मुद्दा विवेचन की परिधि में आ गया है। भारतीय स्त्री विमर्श पर यूरोपीय प्रभावों पर विचार करती हुई प्रभा खेतान लिखती हैं, इंपॉर्टेंट कॉमा पे, क्या स्त्री विमर्श केवल पश्चिमी विचारधारा है? क्या वहां की स्त्रियां केवल अपनी समस्या से जूझ रही हैं? यहां भारतीय समाज में उसकी उपयोगिता, जहां तक उपयोगी का प्रश्न है, पश्चिम की बहुतेरी चीजें, तकनीक और ज्ञान को हमने समाज में काम में लिया है। यह सही है कि पश्चिम की कोई भी विचारधारा हम उसी रूप में नहीं अपनाते। सामाजिक आलोचना के क्षेत्र में हम उन पूर्वानुमानों को काम में लेते रहेंगे, जिससे वैचारिक जगत में सुविधा मिले। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हंस, जनवरी फरवरी 2000, पृष्ठ संख्या 22। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय स्त्रीवादी आंदोलनों पर यूरोपीय प्रभाव बहुत गहरा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन पश्चिमी आंदोलन की नकल है। अध्ययनों से साफ पता चलता है कि पश्चिमी विचारधारा को यहाँ के स्त्रीवादियों ने अपने ढंग से भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया है। पृष्ठ संख्या 34। पूंजीवाद और स्त्री, विभिन्न आयाम। पूंजीवाद ने स्त्री मुक्ति आंदोलन का सर्वाधिक गलत फायदा उठाया। स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता का बहाना बनाकर पूंजीवाद के विभिन्न चरणों में बाजार के सोहदों ने उसे बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। अभय कुमार दुबे ने हंस के विशेषांक स्त्री भूमंडलीकरण पितृसत्ता के नए आयाम के आवरण लेख में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। वे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पूंजीवाद के विभिन्न चरणों में बाजार के फायदे के लिए महिला के श्रम को घर के दायरे से निकालने की शुरुआत हुई, लेकिन महिला मुक्ति अपनी संपूर्णता में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पृष्ठ संदर्भ ग्रंथ है हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 22। पूंजीवाद के द्वारा स्त्री को आर्थिक आजादी तो दी गई, परंतु वह सिर्फ देह के रूप में कैद कर दी गई। भूमंडलीकरण पूंजीवाद की देन है, जिसमें स्त्री देह का व्यवसाय प्रमुखता से फल फूल रहा है। इस संदर्भ में पूंजीवादी अवधारणा के विकास के साथ साथ विभिन्न राज्यों ने अपने राजस्व के लिए भी स्त्रियों का इस्तेमाल किया। अभय कुमार दुबे के अनुसार इनवर्टेड कॉमा ओपन, जिन जिन देशों की अर्थव्यवस्था पर पूंजी के चंचल चरित्र के कारण दुष्प्रभाव पड़े, उन देशों में घरेलू काम के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहित किया गया। अमीर देशों में घरेलू काम के लिए और यूरोप में चकला घरों के लिए करोड़ों स्त्रियों को अपराधी गिरोहों के जरिए सीमा पार भेज दिया गया। इस व्यापार में भूमंडलीकृत राष्ट्रों की छिपी और खुली सहमति शामिल थी। उन स्त्रियों ने अजनबी धरती पर अपना श्रम और देह बेचकर विदेशी मुद्रा भेजी, जिससे देशी अर्थतंत्रों ने विदेशी कर्ज चुकाया और भूमंडलीकरण की होड़ जारी रखी। औरत की देह, उसके श्रम और उसकी छवि के भूमंडलीकरण के ने अतीत के किसी भी काल के मुकाबले स्त्रियों का अधिक सर्वाधिक दोहन किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 26। उपरोक्त कथन के पक्ष में एक सर्वेक्षण का निष्कर्ष देखना समीचीन होगा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, 1992 तक गरीब देशों का कर्ज 1.4 खरब डॉलर हो चुका था। उन्हें कर्ज की किस्तें और ब्याज चुकाने में मूलधन से भी ज्यादा 1.6 खरब डॉलर का भुगतान करना पड़ रहा था। इसके बाद पूंजी के मुक्त प्रवाह और उड़न छू पूंजी की कारिस्तानियों के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के देश गहन मुद्रा संकट के शिकार हो गए। एक तरह से उनके अर्थतंत्रों का दिवाला निकल गया, इसलिए उन्हें अपनी औरतें निर्यात करके सेक्स टूरिज्म को प्रोत्साहित करके और वधुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने का सिलसिला शुरू करना पड़ा, जो आज तक जारी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ है हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 27। विदेशों में काम कर रही औरतें, चाहे वे यौन उद्योग में हो या घरों में नौकरी करती हो, भूमंडलीकरण के इस युग में सरकारों की विदेशी मुद्रा जरूरतें पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिलीपींस औरतों के निर्यात के मामले में सबसे आगे है। उसके लिए इससे होने वाली आय विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 29। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद ने स्त्री देह को भूमंडलीकृत किया है और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचा दिया। स्त्रियों की यौनिकता का ही नहीं, उसके श्रम का भी सर्वाधिक दोहन पूंजीवाद ने किया। पूंजीवाद के द्वारा नारीवाद को असफल घोषित किया गया। आजादी की बात करने वाली महिलाओं को अनाकर्षक, असुंदर और यौन अक्षम कहकर खारिज किया गया। 80 के दशक में मार्क्सवादी नारीवादियों की मान्यता थी कि पूंजी द्वारा श्रम के शोषण का नतीजा उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं के दरकिनार होते चले जाने और उनकी भूमिका गृहिणी के रूप में सीमित होते चले जाने में निकलती है। इन नारीवादियों का विश्लेषण नर नारी संबंधों को सिर्फ पूंजी और श्रम के संबंधों के अधीन देख रहा था। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 32। लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में कार्यरत कई मार्क्सवादी नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने पाया कि आर्थिक प्रणाली प्राक पूंजी हो, सामंती हो अथवा पूंजीवाद, हर अवधि में विषम नर-नारी संबंधों को प्रोत्साहन देती है और ये संबंध उस समाज के पारंपरिक घटक के रूप में पूंजी के प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं। संदर्भ ग्रंथ है वही, पृष्ठ संख्या 33। उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीवाद के द्वारा बाजार की जरूरतों के हिसाब से स्त्री पुरुष संबंधों को बनाया बिगाड़ा जाता रहा है। पूंजीवाद ने अपने भूमंडलीकरण के औजारों से औरतों को अलग अलग पड़े सस्ते और आज्ञाकारी श्रम संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया है। पूंजीवाद के द्वारा स्त्री श्रम के दोहन के संदर्भ में एक सर्वेक्षण दृष्टव्य है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन 1986 से 1996 के बीच 10 वर्षों में श्रम शक्ति को का बड़े पैमाने पर स्त्रीकरण हुआ। पहले से जमे हुए नर नारी संबंधों पर इस प्रक्रिया ने न के बराबर असर डाला। औरत की अधीनस्थ स्थिति का लाभ उठाकर उसे पुरुष के मुकाबले कहीं कम वेतन दिया गया और कहीं ज्यादा काम लिया गया। औरत ने घर में बिना वेतन के प्रजनन और लालन पालन का काम किया। औरत बाजार में उभरती मजदूर के रूप में कठोर परिश्रम करके घर का खर्च निकाला और अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर और पाउंड दिए। इस समय भूमंडलीकरण अपने श्रम प्रधान के दौर से निकलकर उच्च प्रौद्योगिकी के दौर में पहुंच गया है। उसे महिला श्रमिकों की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए उनकी छटनी का सिलसिला चल रहा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 32। समर्थ स्त्रियों की मजबूरियों का फायदा पूंजीवाद द्वारा उठाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था में ताकतवर औरतें चाहे खुद को आत्मनिर्भर कहें, लेकिन वह पूंजीवाद के हाथों की खिलौना भर मात्र है। प्रश्न संख्या 36। पूंजीवाद की इस रणनीति पर विचार करते हुए अभय कुमार दुबे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सुंदर स्मार्ट आदि की अंग्रेज बोलने वाली उच्च और उच्च मध्य वर्ग की यह स्त्री भूमंडलीकरण के गर्भ से निकली कम तनख्वाह पाने वाली और गंदी बस्ती में रहने वाली औरत से भिन्न है। वह पुरुषों पर हुक्म चला सकती है और उनका वेतन केवल इसलिए कम नहीं है कि वह जैविक रूप से पुरुष नहीं है। निश्चित रूप से भूमंडलीकरण ने पिछले 15 वर्ष में ऐसी औरत को बेहद सफलता से दृश्यमान माना है। यह औरत बाजार की लैंगिक तटस्थता और उसके नाम पर स्त्री देह और स्त्री संभ का शोषण करने की प्रत्यक्ष एवं प्रचंड विधियों को ढक लेती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ है वही पृष्ठ संख्या 36। चूंकि पितृसत्ता का पूंजी पर नियंत्रण रहा है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि इस नए संपन्न वर्ग की स्त्रियों के शोषण के नए मानदंड गढ़े गए। सबल स्त्रियों के शोषण को मनीषा ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आपसी संबंध प्रगाढ़ करने वाली यही उन्मुक्त विचारधारा अचानक घटिया लगने लगती है और पति नामक मर्द अपने अधिकार इस्तेमाल करने के लिए हाथ पांव मारने लगता है। नताशा सिंह और नैना साहनी हाई क्लास सोसाइटी की जान हुआ करती थी। जैसिका लाल जो बिन ब्याहे ही मार दी गई पार्टी बाज शौकीन मिजाज लड़की थी और सुहैब इलियासी ने बकायदा अंजू से प्रेम विवाह करने के बाद उसे कथित रूप से मारा। नताशा, नैना, अंजू तीनों ही सिर्फ उदाहरण भर है। जब खुलेपन की शौकीन ये स्त्रियां पारिवारिक जीवन में आई तो इनके प्रेमियों पर पति हावी होता गया और वह संभ्रांत सलीकेदार दड़बे में रहने वाली खांटी पत्नी तलाशने लगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ दैनिक राष्ट्रीय सहारा, आधी दुनिया, 23 मार्च 2002। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद चाहे कितनी भी स्वतंत्रता स्त्री को दे दे, अंततः इस विचारधारा में उसकी स्थिति सिर्फ उपभोग की वस्तु जैसी है, क्योंकि पूंजीवाद पितृसत्ता का ही आधुनिक संस्करण है। समाज और परिवार इस नई औरत को कुछ इस तरह दबाव में डालता है कि वह विवाह करके और संतानोत्पत्ति के बाद स्वयं घर परिवार के लिए अपना कैरियर छोड़कर वापस चली जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी पेशा औरतों में यह प्रवृत्ति देखी गई है। बाजार के आग्रहों में घरेलू काम और बच्चों के लालन पालन के पारंपरिक काम का साझीकरण करने का कोई स्थान नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स। संदर्भ ग्रंथ है हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 31। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद के इस दौर में पुरुषों द्वारा ताकतवर औरतों का आर्थिक मानसिक शोषण तो हुआ ही है, साथ ही उसका यौन शोषण भी धड़ल्ले से हुआ है। ब्रिटेन में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार दफ्तरों में काम करने वाली 28% औरतों को दफ्तर में संभोग करना पड़ता है और उनमें से 65% को इसका कोई खेद नहीं है। पृष्ठ संख्या 37। 2000 कर्मिक महिलाओं से बातचीत करके संपन्न किया गया यह सर्वेक्षण बड़े शरारतपूर्ण अंदाज में जानकारी देता है कि कार पार्किंग में कितनी प्रतिशत महिलाओं को यौन क्रिया करनी पड़ती है। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 38। स्पष्ट है कि पढ़ी लिखी संभ्रांत घर की स्त्री भी पूंजीवाद के शोषण से बची हुई नहीं है। पूंजीवाद ने स्त्री की जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है उसकी छवि। पूंजीवाद के द्वारा स्त्री सौंदर्य के नए प्रतिमान गढ़े गए। विश्व सुंदरी और ब्रह्मांड सुंदरी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हुआ, फिर विश्व सुंदरी को बाजार में मार्केटिंग के लिए उतारा गया। राजकिशोर स्त्री परंपरा और आधुनिकता में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह पूछना इसलिए जरूरी है कि विश्व सुंदरियों का जो उपयोग होता है उसका सुंदरता की किसी भी स्वस्थ अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखा गया है। विश्व सुंदरियों को किसी भी रचनात्मक और कलात्मक काम में नहीं लगाया जाता, यहाँ तक कि सौंदर्य की पाठशालाओं का शिक्षक भी नहीं बनाया जाता ताकि दूसरी स्त्रियां अपना भविष्य बेहतर कर सकें। उनका उपयोग मुख्यतः विज्ञापन जगत के लिए होता है। जिस उत्पाद को किसी विश्व सुंदरी की लोभनीय छवि के साथ जोड़ दिया जाता है वह स्वयं लोभनीय बन जाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राजकिशोर, पुस्तक स्त्री परंपरा और आधुनिकता, वाणी प्रकाशन 1999, पृष्ठ संख्या 93। पूंजीवादी दौर में पितृसत्ता के नए चेहरे की इस राजनीति को जानने के लिए राजेंद्र यादव की टिप्पणी गौर तलब है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। स्त्री अपनी बौद्धिक या अन्य उपलब्धियों के लिए चाहे जितनी हाय तौबा मचाती रहे, पुरुष की जिद है कि साम दाम दंड भेद से उसे कमर कूल्हे नितंब छातियों से ऊपर उठने नहीं देगा। देह को वह इस चकाचौंध के साथ पेश करेगा कि हर औरत देह बने रहने को ही अपने होने की एकमात्र सार्थकता मानने को मजबूर हो जाए। उसके दिमाग में मज्जा तक खुद जाना चाहिए कि जब तक उसके पास लुभावनी देह है तभी तक उसकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राजेंद्र यादव, पुस्तक आदमी की निगाह में औरत, पृष्ठ संख्या 28। लेकिन पूंजीवाद के इस सौंदर्य मिथक के बारे में सुधीश पचौरी का विचार कुछ अलग है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। बाजार अपनी जरूरतों के अनुसार सौंदर्य मिथक को बदलता है। क्या सौंदर्य के एक धारणा से दूसरे के संक्रमण की प्रक्रिया नारी का सबलीकरण के क्षण से साक्षात्कार नहीं कराती? व्यावसायिक पत्रिकाओं, मार्केट और ब्यूटी मिथ के साथ साइबर स्पेस में औरत के निजी कमरे के विचार ने एक नितांत नया स्त्री स्पेस बनाया है, जो सामंती स्त्री स्पेस के मुकाबले अग्रगामी और जनतांत्रिक है। इसे सिर्फ इसलिए नहीं धिकारा जा सकता कि वह एक पूंजीवादी स्पेस है, वह अपनी द्वंद्वात्मकता में ही खुलता है और वैसे ही पढ़ना जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सुधीश पचौरी, हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 101। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजीवाद ने सौंदर्य के ऐसे मिथकों का निर्माण किया है जिसमें स्त्री की छवि सौंदर्य की कठपुतली जैसी उभरती है। स्त्री को, पृष्ठ संख्या 38, कुछ स्वतंत्रता तो मिली लेकिन उससे ज्यादा उसका शोषण हुआ। पूंजीवादी पितृसत्ता की राजनीति को अभय कुमार दुबे अपने लेख स्त्री भूमंडलीकरण पितृसत्ता के नए आयाम में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा पर, सौंदर्य उद्योग का ख्याल है कि अगर गृहिणियों में भी में अपने शरीर, त्वचा और चेहरे के लिए ललक पैदा कर दी जाए तो उन्हें विशाल उपभोक्ता वर्ग में बदला जा सकता है। इसी मकसद के लिए टीवी और वुमेन मैगजीनों का नियोजित इस्तेमाल किया जा रहा है। पति को दफ्तर और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद गृहिणियां दोपहर में खाली होती हैं। ठीक उसी समय टीवी पर अपने बालों को संवारने, नाखून ठीक करने की विधियां और उनके फायदे सिखाए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हंस, मार्च 2001, पृष्ठ संख्या 42। उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य सामने आता है कि पूंजीवाद अपने विभिन्न आयामों द्वारा स्त्री का शोषण करता है और उसे एक वस्तु की तरह बाजार में परोसता है। पूंजीवाद आज के बाजार का कुछ ऐसा स्वरूप स्थिर कर रहा है जिसमें स्त्रियां सिर्फ उपभोग की वस्तु बनी रहे। समाप्त।